ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 32 33 और 34। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम् सांगोपांगास्त्र पार्षदम् यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधस त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् माया मृगं दैतेप्सितं अन्वदावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् जेयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणत पाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो आप सबका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवार इस विरार के भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के पंचम अध्याय का 32, 33 और 34वां श्लोक है। भागवत के 11वें स्कंद में देवर्षि नारद वसुदेव जी के घर पर जाते हैं। वसुदेव जी के घर जाकर वसुदेव जी उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करके नारद मुनि से जिज्ञासा करते हैं कि हे नारद जी, हम जैसे गृहस्थों के लिए आप उपदेश दीजिए। वसुदेव जी की भागवत धर्म का उपदेश सुनने की जिज्ञासा हुई। तब नारद मुनि वसुदेव जी को वह संवाद सुनाते हैं जो संवाद राजा निमि और नव योगेंद्र के बीच में हुआ था। जनकपुर में रहने वाले राजा निमि और नव योगेश्वर जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, इन दोनों के बीच में कुछ संवाद हुआ। वह संवाद और कुछ नहीं, वही संवाद भागवत धर्म है। मुख्य महाराज निमि ने 9 प्रश्न पूछे और 9 प्रश्न के उत्तर क्रम से नव योगेंद्र ने दिए। नव योगेंद्र का नाम देते हुए भागवत में आया है, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजन। निमि महाराज ने बहुत प्रश्न पूछे और उन प्रश्न में उनका अंतिम प्रश्न था और ये अंतिम प्रश्न महाराज निमि करभाजन ऋषि को पूछ रहे थे। करभाजन ऋषि को प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण की दृशोन्निभि नामना वा केन विधिना पूज्यते तदि होच्यताम। हे प्रभु, हे करभाजन जी, कस्मिन काले से भगवान, किस काल में कौन से भगवान, किस काल में भगवान का कौन सा अवतार इस संसार में प्रकट होता है, भगवान किस काल में किस युग में कौन सा अवतार धारण करते हैं और किम वर्ण की दृशोन निभि, और उस अलग अलग अवतारों में अलग अलग युगों के अलग अलग अवतारों में भगवान कौन सा रंग ग्रहण करते हैं, नामना वा केन विधिना, और उन भगवान का नाम क्या है, और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, पूज्यते तदि होच्यताम, कृपया करके आप हमें इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न ठीक से समझ लेना चाहिए कि यह बात तो निश्चित है कि प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है, संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है, परंतु उसे पहचानने के लिए यहां पर कुछ प्रश्न दे रहे हैं कि कस्मिन युगे, कौन से युग में भगवान का कौन सा अवतार होता है, और उसे पहचानने के लिए भगवान का वर्ण कौन सा होगा, शरीर का वर्ण, और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग युग में अलग अलग विधि है, तो कौन से युग में कौन से भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या विधि है, कृपया करके उच्चताम आप हमें कहे। बहुत सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए करभाजन ऋषि कहते हैं कि हे निमि महाराज, सतयुग में जिस भगवान का अवतार होता है उनका रंग है सफेद, श्वेत रंग के भगवान अवतरित होते हैं और वे है हंस अवतार, और उस हंस अवतार भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए। सतयुग में सबसे पहले भगवान का रंग बताते हैं कि वे सफेद रंग के होंगे, और सतयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो ध्यान करना होगा, ध्यान करके सतयुग में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद ध्रुव महाराज ने किया। तत्पश्चात त्रेता युग में भगवान का वर्ण रक्त रंग का होता है, रक्त माने लाल, और वह भगवान है यज्ञ अवतार, और उस युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना होता है, यज्ञ का अनुष्ठान करना होता है। तत्पश्चात द्वापर युग में भगवान का रंग, वैसे तो भगवान का रंग शुक पात्राव कहा गया है, तोते के पंख के समान, परंतु हे निमि महाराज, पिछले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला रंग था और उनका नाम कृष्ण था, और उसे प्राप्त करने के लिए द्वापर में अर्चन विधि थी, पूजा आरती अर्चन के द्वारा द्वापर युग में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब कलयुग की बारी आई तो कहते हैं, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनो प्राये यजन्ति ही सुमेधस। कहते हैं कि कलयुग में कौन से भगवान, कलयुग में भगवान का रंग कौन सा होगा, कहते हैं सफेद गोरा, और भगवान का नाम क्या होगा? कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। और उनको प्राप्त करने के लिए, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं संकीर्तन करना होगा। इसी बात को इस श्लोक में, आपके प्रथम श्लोक में लिखा है कि कलयुग के बारे में बताते हुए करवाजन ऋषि कहते हैं कृष्ण वर्णम। कलयुग में जो भगवान आएंगे वे क्या करेंगे? कहते हैं कृष्ण वर्णम। वर्ण का अर्थ होता है वर्णमाला। वर्ण के दो अर्थ होता है, एक तो रंग और दूसरा अर्थ होता है वर्णमाला, अर्थात शब्द अक्षर। तो यहां पर वर्ण का अर्थ वर्णमाला है और कृष्ण वर्ण का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का वर्णन करेंगे। कलयुग में जो भगवान का अवतार होगा, जो भगवान आएंगे, वे कृष्ण का अर्थात अपना ही वर्णन करेंगे, अपना ही नाम लेंगे और अपनी ही कथा कहेंगे। और आप देखिए चैतन्य महाप्रभु में यह पाया जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण का नाम लेते थे और कृष्ण कथा करते थे। तो सबसे पहले है कृष्ण वर्णम। तत्पश्चात पूछा गया कि उनका रंग कैसा होगा? कहते हैं त्विषा अकृष्णम, त्विषा अकृष्णम। त्विषा का अर्थ होता है रंग और कृष्ण का अर्थ होता है काला, परंतु यहां पर कह रहे हैं अकृष्णम, बिल्कुल काला से बिल्कुल उल्टा होता है सफेद। तो उनका रंग काला नहीं सफेद होगा। चैतन्य महाप्रभु गौरांग थे, गौरंग वाले थे। और तत्पश्चात कहते हैं कि सांगो पांगास्त्र पार्षदम, वे कौन सा शस्त्र अस्त्र धारण करेंगे? तो कहते हैं संग उपंग, उनके साथ रहने वाले भक्त ही उनका अस्त्र और शस्त्र होंगे और उनकी सुंदरता ही उनका शस्त्र और अस्त्र होगा। और वे क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तनो प्राय, वे यज्ञ के रूप में भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। उसे प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है? तो कहते हैं संकीर्तन विधि। संकीर्तन अर्थात साथ साथ बैठकर भगवान का कीर्तन करना, इसे संकीर्तन कहते हैं। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक अल्टीमेट उपाय बताते हैं कि संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। कलयुग में सतयुग का उपाय अपनाएंगे, ध्यान करेंगे, या त्रेता युग का उपाय अपनाएंगे, यज्ञ करेंगे, या द्वापर युग का उपाय, ये सब नहीं चलेगा। कलयुग में जो साधन करने के लिए कहा गया है वही करने से कलयुग में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कलयुग में यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और ये कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन वही कर सकते हैं जो बुद्धिमान है। यजंती ही सुमेधस, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाएंगे, मूर्ख लोग ये नहीं कर पाएंगे। सुमेध, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और सुमेधा का अर्थ होता है सुष्ठु बुद्धि, जिसकी बुद्धि परफेक्ट है वही कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। वास्तव में आप सब बहुत बुद्धिमान हो, जिससे दूर दूर से यहां पर आकर कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, यह बुद्धिमानी की निशानी है। संसार में मूर्ख लोगों की संख्या कम नहीं है। यहाँ बाजू में ही सामने बिल्डिंग दिख रहा है, एक व्यक्ति वहां से नहीं आया, और कुछ लोग कई दूर दूर से, बोरी वली दही सर से, महेंद्र से आए हैं, प्रभु जी तो अंधेरी से आए हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति का यह लक्षण है, भजन करने वाला बुद्धिमान होता है। यजंति ही सुमेधस। और इस भागवत में चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान है, महापुरुष है। इसका प्रमाण देते हुए अगले श्लोक में करवाजन ऋषि कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेपसित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद अरण्यम माया मृगम दैतिप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भागवत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और सभी लोगों को, सभी भक्तों को यह श्लोक याद होना चाहिए। यह श्लोक एक ऐसा विचित्र श्लोक है जिस श्लोक में भगवान की कुछ लीला दी गई है, तीन या चार लीला दी गई है, और यह लीला भगवान राम त्रेता युग में अवतरित होने वाले राम, द्वापर युग में अवतरित होने वाले कृष्ण और कलयुग में अवतरित होने वाले चैतन्य महाप्रभु तीनों लोगों पर लागू होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो कई बार उन्होंने षडभुज स्वरूप दिखाया। षडभुज स्वरूप अर्थात उन्होंने ऐसा रूप दिखाया जिसमें भगवान के तीन अवतार थे, तीन स्वरूप थे। एक थे राम, एक कृष्ण और एक चैतन्य महाप्रभु। आपने कभी यह दृश्य देखा होगा, चैतन्य चरितामृत में है, सार्वभौम भट्टाचार्य को और उस विप्र ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज रूप दिखाया था। तो उसी षडभुज रूप का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तीनों की लीला इसमें समन्वित है। तो इसका अर्थ यह है कि वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है और चैतन्य महाप्रभु ही राम बनकर आए, ये तीनों एक ही भगवान है। इसलिए आइए सर्वप्रथम लीला लेते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्यागना, सुर का अर्थ होता है देवता, इप्सित का अर्थ होता है इच्छा, राज्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी का अर्थ होता है बहुत सुंदर लक्ष्मी। तो जो देवताओं के द्वारा भी इच्छित है, जिसकी कामना देवता भी करते हैं, वैसी लक्ष्मी को त्यक्त्वा त्याग दिया। तो आइए सर्वप्रथम हम भगवान श्री रामचंद्र को युग के अनुसार लेंगे। भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार से त्यागे, आप सब इस लीला को जानते हो कि वशिष्ठ जी राजा दशरथ की इच्छा हुई कि अब मैं राज कारोबार छोड़कर मेरे पुत्र को राजा बनाकर भगवान का भजन करूं। और हमारे इतिहास में यह प्रणाली आई है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ बड़े पुत्र राम को राजा बनाने के लिए सोचा, वशिष्ठ जी के पास गए और कहा कि कल का दिन ही सबसे श्रेष्ठ है, राम को राजा बना दो। परंतु प्रसिद्ध कथा है कि जब मंत्रा को पता चला, कैकेयी के कान भरे और कैकेयी ने अपने पति दशरथ को बुलाकर वह दो वर मांगे, एक वर भरत को राजा बनाओ और दूसरा राम को वनवास। जिस अवधपुरी का राजा बनने के लिए बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते थे और भगवान को ऑलमोस्ट राजा बनाया गया था, उस देवताओं के द्वारा इच्छित अवधपुरी के राज्य को त्यक्त्वा भगवान श्री रामचंद्र ने त्याग दिया। भगवान श्री रामचंद्र के लिए यह आया है त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, उस राज लक्ष्मी राजघराने को छोड़ दिया और जंगल में तपस्वी का वेश बनाकर जंगल में चले गए। तो सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र के लिए, अब कृष्ण के लिए कैसे फिट होगा? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा में पूर्ण ऐश्वर्य था। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, उस समय सबसे बड़ा शहर मथुरा था। आज हम कहते ना अमेरिका जाना है, अमेरिका में उस वक्त भारत पूरी दुनिया का अमेरिका मथुरा था। बहुत समृद्ध देश था। आपने सुना होगा कृष्ण लीला में भगवान वसुदेव जी और देवकी का विवाह होने जा रहा था, तो उस मथुरा में रहने वाले उस देवक राजा ने उसे दहेज में क्या क्या दिया, 500 हाथी और सारे हाथी के पांव में सिर पर ऊपर सोने सोने के गोल्ड के गहने लादे गए थे, 18,000 रथ दिए थे, 1500 घोड़े दिए थे, 200 दासियां, ये सब के गले में कई कई किलो सोना लगाया गया था। समृद्ध देश था। उस समय प्राणियों को पशुओं को सोने के गहने पहनाया जाता था, आज मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। उस समय समृद्ध था हमारा भारतवर्ष। तो मथुरा ऐश्वर्यशाली नगरी थी, परंतु भगवान ने जन्म लेते ही त्यक्त्वा, भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही यह ऐश्वर्यमय मथुरा को त्यक्त्वा, जिस मथुरा को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, भागवत में वर्णन है, देवता लाइन में खड़े हैं कब मथुरा में जन्म हो। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सीति, सुर ईप्सित देवता जिस मथुरा में रहना चाहते हैं उस मथुरा को भगवान ने त्यक्त्वा त्याग दिया। तो कृष्ण के लिए यह लीला चैतन्य महाप्रभु के लिए कैसे है? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया, कहते हैं ये विष्णुप्रिया साक्षात लक्ष्मी के समान थी, बहुत सुंदर थी। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में सोचा कि यदि मैं इस प्रकार घर पर बैठा रहूंगा तो केवल इस घर वालों का और ज्यादा से ज्यादा मेरे गांव वालों का उद्धार हो सकता है, जब तक संन्यास नहीं लूंगा तब तक पूरे भारत भूमि का उद्धार नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लेने के लिए सोचा, यद्यपि उनके घर पर कोई कमी नहीं थी, पत्नी भी बहुत सुंदर थी और कैसी, लक्ष्मी के समान। लक्ष्मी के समान पत्नी को चैतन्य महाप्रभु ने रातों रात त्याग कर वन में निकल पड़ा, त्याग दिया। यह नहीं देखा कि उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, यह सब कुछ देखे बिना केवल जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वन में चले गए। महाप्रभु की बहुत असीम कृपा और करुणा है, यद्यपि भगवान को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान संन्यास लेते हैं, वन में चले जाते हैं, मथुरा जैसी नगरी को छोड़ देते हैं, ये भगवान की असीम कृपा है। तो पहली लाइन समझ में आ गई, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, भगवान राम ने अयोध्या को त्यागा, कृष्ण ने मथुरा को त्यागा, और इन्हों चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी को त्यागा। अब दूसरा है धर्मिष्ठ, धर्म इष्ट, जो धर्म में अड़ग है उसे धर्मिष्ठ कहा जाता है। तो आइए फिर से भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार से धर्मिष्ठ है। भगवान श्री रामचंद्र का एक धर्म था कि एक पत्नी एक वचन और एक बाण, एक पत्नी धारण की है तो एक ही पत्नी, यद्यपि राजा सैकड़ों विवाह कर सकता है। रावण की बहन आई थी विवाह करने के लिए, और भी कई लोग भगवान से विवाह करना चाहते थे, परंतु भगवान ने ना कह दिया, कहा कि यदि विवाह ही करना है तो द्वापर युग में आइएगा, मैं किसी को ना नहीं कहूंगा। परंतु भगवान रामचंद्र धर्मिष्ठ थे, और यहां तक भगवान की धर्म इष्टा तो यहां पर पता चलती है कि पिताजी ने अपनी माता को जो वर दिया था, भगवान को जैसे पता चला कि पिताजी दुविधा में है, पिताजी का एक और वचन है और दूसरी ओर पुत्र का प्रेम है, एक ओर पिता को उनका वचन बाधित कर रहा है और दूसरी ओर यदि वो वचन पालन करे तो पुत्र के प्रति प्रेम टूट जाएगा। भगवान को जब पता चला कि पिताजी इस दुविधा में है तो अपने पिता धर्म का पालन किए और तुरंत उस राज रजवाड़े नौकर जाकर धन संपत्ति अवधपुरी को त्याग कर भगवान वन में चले गए। इसे धर्मिष्ठ कहा जाता है। पति धर्म देखिए, मित्र धर्म, भगवान ने जो अपने भाइयों के साथ धर्म का पालन किया है वो भी अद्भुत है, और अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए लाखों असुरों को मारना पड़ा, समुद्र पर सेतु बांधना पड़ा, भगवान ने बांध लिया, परंतु कैसे भी करके अपनी पत्नी का पालन किया, उनकी रक्षा की। तो भगवान श्री रामचंद्र धर्मिष्ठ थे, धर्मिष्ठ, धर्म का पालन करने वाले। यहां तक एक धोबी ने कह दिया, एक धोबी के कहने पर और अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, त्याग दिया, परंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। आज यदि कोई धोबी आकर कहा होता तो पहले धोबी को उड़ा देता, पत्नी को तो बाहर निकालने की बात दूर रही। और यदि ऐसा हो तो पत्नी पति को निकाल देगी, परंतु पति तो पत्नी को आज के समय में नहीं निकाल पाएगा। पति कितना भी धर्म कर्म करता हो, परंतु राम जितना धर्मिष्ठ कोई नहीं हो सकता है। आज का सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा भगत भी पत्नी के सामने झुक जाता है, परंतु भगवान धर्मिष्ठ थे। भगवान को पता था, फिर भी अपनी राज मर्यादा को रखने के लिए भगवान ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। अपने दो 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 नन्हे नन्हे बालक थे, क्या भगवान नहीं जानते थे ये मेरे पुत्र हैं? परंतु फिर भी उन्होंने उसे वन में रहने दिया, स्वीकार नहीं किया। तो भगवान श्री रामचंद्र धर्मिष्ठ थे, भगवान श्री कृष्ण कैसे धर्मिष्ठ थे? भगवान श्री कृष्ण की धर्मता धर्मिष्ठता तो भगवद गीता से ही पता चलती है। 45 मिनट में जो भगवद गीता का ज्ञान दिया है, आज सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। सारे धर्मों का सार भगवान ने दे दिया। धर्मिष्ठ धर्म संस्थापनाथाय, धर्म की स्थापना कर दिए भगवान कृष्ण भगवद गीता देकर। तो राम ने धर्म की स्थापना की, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता देकर धर्म की स्थापना की। और चैतन्य महाप्रभु कैसे धर्मिष्ठ थे? चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में कठोर सन्यास धर्म का पालन करके अपनी धर्मिष्ठता को व्यक्त किए। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए और उनके जीवन में आया है कि एक बार उनकी माँ ने या किसी ने तेल भेजा, ऑयल मसाज करने के लिए। तो उनके सेवकों ने कहा कि महाप्रभु आप मसाज कर लीजिए, हम कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूं और सन्यासी को यह शोभा नहीं देता है। चैतन्य महाप्रभु इतने धर्मिष्ठ थे, सन्यास धर्म का पूरा पूरा पालन करते थे। सन्यास धर्म में शास्त्र में आया है कि किसी भी सन्यासी को स्त्री और राजा या धनी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कभी भी किसी स्त्री के साथ एकांत में नहीं मिले और कभी किसी राजा से नहीं मिले। मैंने शुक्रवार को कथा कही थी, उस समय का राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहता था, यद्यपि महाप्रभु का भक्त था और बहुत अनुनय विनय किया, परंतु महाप्रभु ने ना कह दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य से कहलवाया, फिर भी ना कह दिया। कहा कि यदि मेरे राजत्व में आपको कुछ दोष लगता है तो मैं राजा की पदवी से निकल जाता हूं। फिर भी महाप्रभु ने कहा कि एक बार जो राजा बन चुका है उसे मैं कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि ये सन्यास धर्म है। महाप्रभु नहीं मिले। आज का सन्यासी तो राजा को पहले मिलेगा, कुछ काम बन जाए। आज के लोग गरीब लोगों से काम मिलना चाहते हैं, धनी लोगों से, धनी को प्रचार करेंगे। परंतु सन्यास धर्म है कि कभी स्त्री और राजा से नहीं मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास धर्म का पालन किया और अपनी धर्मिष्ठता को निभाया। इसलिए यहां पर जो धर्मिष्ठ शब्द आया है भगवान राम कृष्ण और महाप्रभु के। अब आगे है आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम। आर्य माने ब्राह्मण, आर्य के बहुत अर्थ होते हैं। तो आर्य वचसा, वचसा माने वाणी। कहते आर्य के कहने पर यत वे अगाध अरण्यम वन में चले गए। अरण्य का अर्थ होता है वन। आर्य वचसा यत अगाध अरण्यम, जो आर्य के कहने पर वन में चले गए। आइए भगवान रामचंद्र आर्य के कहने पर वन में चले गए। तो भगवान रामचंद्र की मां भी आर्य वर्ष की ही एक जननी है, मां है, स्त्री है। तो कैकेयी ने कहा, कैकेयी के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र वन में चले गए, यह बात यहां पर फिट होती है। और आर्य वचसा, आर्य का अर्थ माता पिता भी होता है। आज ही आपने सुना दोपहर को भगवान कृष्ण जब गोकुल से मथुरा आए, कंस का वध करके जब अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किए, तो माता पिता ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण अब आप पढ़ने के लिए, विद्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाइए। तो आर्य वचसा अपने माता पिता के कहने पर भगवान कृष्ण यद अकाद अरण्यम, वे वन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में चले गए। और चैतन्य महाप्रभु के लिए आर्य वचसा, आर्य का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। महाप्रभु की लीला में एक समय की बात, महाप्रभु प्रतिदिन शिवास आंगन में, शिवास आचार्य के घर पर शिवास आंगन में जोर जोर से कीर्तन करते थे, और वह कीर्तन रात भर होता था। बहुत सुंदर सुंदर लीला है शिवास आंगन की, हमारे नलिन प्रभु वहां जाकर आए हैं। शिवास आंगन में महाप्रभु कीर्तन करते हैं, और यदि किसी को भूख लगती, एक समय की बात कीर्तन करते करते भूख लगी, तो महाप्रभु ने एक आम की गुठली ली और उस गुठली को सबके सामने देखते देखते जमीन में बो दिया और पानी डाला, तो सबके सामने देखते देखते वह 2-3 मिनट में बहुत बड़ा वृक्ष हो गया, और 5 मिनट में तो उस आम को गिरा गिरा कर लोग खाने लगे। शिवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन कीर्तन करते थे एक समय की बात, और उस शिवास आंगन में स्पेशल भक्तों को ही आमंत्रित किया जाता था। जैसे हमारे काउंसिल में सबको एंट्री नहीं होती है, स्पेशल भक्तों को। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि लोग काउंसिल करते परंतु हमें क्यों नहीं बुलाते हैं। परंतु किसी को कितना भी बुरा लगे, क्या कलयुग में कुछ हो नहीं सकता है। परंतु वहां पर एक ब्राह्मण इस शिवास आंगन में आना चाहा, परंतु महाप्रभु ने उसे ना कह दिया कि ये पर्सनल कीर्तन है, यहाँ पर सब लोग नहीं आ सकते। वे आना चाहता था परंतु महाप्रभु ने नहीं आने दिया। जब बहुत ना कह दिया तब उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को श्राप दे दिया कि आप मुझे यहाँ पर आने नहीं देते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी भी भौतिक सुख नहीं मिलेगा और इस संसार को छोड़कर वन में चले जाओगे। तो उस आर्य, उस ब्राह्मण का श्राप महाप्रभु ने अपने शिरोधार्य किया और वे सन्यास लेकर घर पर नहीं रहे, वन में चले गए। इसलिए आर्य वचसा ब्राह्मण के कहने पर यद अगाध अरण्यम, झारखंड के जंगल में या वृंदावन में महाप्रभु घूमने लगे। तो इस प्रकार आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम भगवान राम के लिए जो वन में गए 14 साल के लिए, कृष्ण के लिए जो सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, और चैतन्य महाप्रभु के लिए जो ब्राह्मण के कहने पर झारखंड के जंगल या वृंदावन में। अब अंतिम है माया मृगम दैत्यप्सितम अन्वधावत। तो भगवान श्री रामचंद्र माया मृगम, आप सब प्रसिद्ध घटना आप सब जानते हो कि जब रावण की बहन सुरपंखा ने जाकर कहा कि उस जंगल में बहुत सुंदर तपस्वियों के साथ एक सुंदर स्त्री है और भैया आपके साथ विवाह करने के योग्य है, तुरंत रावण खड़ा हुआ, अपने मामा मारीच के पास गया। मारीच बहुत माया जानता था, मायावी था। तो रावण के कहने पर मारीच ने हिरण का रूप धारण किया। वास्तव में वह हिरण नहीं था, वह मायावी हिरण था, माया मृगम। वो मृग था परंतु कैसा मृग था, मायावी मृग था, और अपना सींग सोने जैसा बना लिया था। सीता जी ने कहा कि प्रभु ये मृग बहुत अच्छा है, उसकी सींग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे लाकर दो। तो अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण उस मृग के पीछे अन्व धावत, धावत माने दौड़ना, और अन्व का अर्थ होता है पीछे पीछे। तो माया मृगम, माया से बने हुए उस मृग के पीछे अन्व धावत जो दौड़े, वैसे महापुरुष को वंदे, अहम वंदे में प्रणाम करते। तो भगवान श्री रामचंद्र माया से बने हुए मृग के पीछे अन्व धावत, तो राम के लिए है, कृष्ण के लिए कैसे है। माया मृगम, मृग का अर्थ मनुष्य भी होता है कभी कभी, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, प्रसिद्ध श्लोक। कभी कभी मनुष्य को मृग कहा जाता है। और माया दो प्रकार की माया आप सब लोग जानते हैं, महामाया और योग माया। तो योग माया जो है भगवान को अपनी लीला में सहायता करती है। तो योग माया, तो महामाया तो इस भौतिक जगत में है और योग माया का ही एक स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। तो यहां पर माया जो है वे श्रीमती राधा रानी है। तो माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत, जो माया श्रीमती राधा रानी के पीछे पीछे अन्वधावत दौड़े वैसे महापुरुष को वंदे मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पीछे पीछे भागते थे, दौड़ते थे। इसलिए यह श्लोक, यह वाक्य कृष्ण के लिए लागू होता है। और मृग का अर्थ होता है प्राणी, पशु। और यदि इसका दूसरा अर्थ गाय या बछड़े भी यदि हम ले, तो भगवान श्री कृष्ण गाय और बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, कभी आगे नहीं दौड़ते हैं। भगवान गोपाल है, गो के पालक है, उनकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए भगवान गाय और बछड़े के पीछे पीछे अन्वधावत। तो मृग पशुओं के, गाय और बछड़े के पीछे पीछे जो दौड़ते हैं उसे मैं प्रणाम करता हूं। और चैतन्य महाप्रभु के लिए माया मृगम, जो भजन नहीं करते हैं वे मृग है, पशु के समान है। और माया माने जो महामाया में फंसे हुए हैं। तो महामाया में फंसे हुए मनुष्य जो प्राणी बन चुके हैं, महामाया में फंसे हुए पशुओं के पीछे दैत, दैत का अर्थ होता है दया करके, करुणा करके। माया में पड़े हुए लोगों के पीछे अपनी दया से, करुणा से अन्वधावत पीछे पीछे दौड़े। महाप्रभु की लीला में सब जानते हैं कि कोई भजन करना नहीं चाहता था, महाप्रभु उनके पीछे पीछे दौड़ते थे और पकड़ पकड़ कर गले मिला मिला कर उसे अपनी प्रेम भक्ति का दान करते थे। लोग भजन करना नहीं चाहते थे परंतु भगवान उसके पीछे भागते थे उसे पकड़ने के लिए। तो जो लोग माया में फंसे हैं, महामाया में फंसे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर दैत दया करके अन्वधावत पीछे पीछे दौड़े। वंदे महापुरुष ते तत चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। तो माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत भगवान राम के लिए भी है जो मृग के पीछे भागे, भगवान कृष्ण के लिए है जो राधा रानी या गाय और बछड़े के पीछे भागे, और चैतन्य महाप्रभु के लिए है जो भगवान से विमुख माया में फंसे हुए लोगों के पीछे भागे। तो इस प्रकार ये श्लोक, ये तीनों ईश्वर भगवान के इस तीनों स्वरूप के लिए है। और करभाजन ऋषि कहते हैं कि ऐसे महापुरुष, भगवान पुरुष नहीं, भगवान महापुरुष है, ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और तत्पश्चात एक श्लोक में कहते हैं, ध्येयम् सदा परिभवघ्नम् अभीष्ट दोहम्। मान लीजिए निमि महाराज ने प्रश्न पूछा, ठीक है कृष्ण ही भगवान है जो त्रेता युग में राम के रूप में आए और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो ठीक है यही भगवान है, तो इसका क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ध्येयम्, उनका ध्यान करना चाहिए। पूछा होगा कितना घंटा? तो कहते हैं सदा, केवल दो घंटा या सोलह माला ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं बस सोलह माला हो गया, सब कुछ चार नियम पालन हुआ, सोलह माला हुआ, हम तो बहुत बड़े भगत हो गए। अरे प्रभुपाद जी ने आगे शब्द लगाया है एटलीस्ट, कम से कम सोलह, तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा मानते हैं, कम से कम सोलह करना है। वास्तव में हो सके तो सदा सर्वदा जपना चाहिए जयम, इसमें कोई नियम काल बाधित नहीं है। भगवान का ध्यान, भगवान का भजन कितना करना चाहिए? ध्येयम सदा, सदा के लिए। सदा का अर्थ होता है एक दिन में सदा सभी घंटे, और जीवन में सदा, केवल 10 साल 15 साल नहीं, जीवन भर समय और काल के रूप में सदा सर्वदा ध्येयम। अच्छा इसका ध्येय करने से, सदा भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? कहते परिभवकनम अभीष्ट दोहम, जो भी अभीष्ट है, हमारी जो भी इच्छा है वह पूर्ण होती है। तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम। अच्छा, आप कह रहे हो कि भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और सदा करना चाहिए और इससे सभी इच्छा पूर्ण होती है। कोई एग्जाम्पल है? कोई लोग भगवान की कृष्ण की भक्ति किए हैं तब गर्भाजन ऋषि कहते हैं, लोगों की बात छोड़ दीजिए, शिव विरंचि भोलेनाथ भगवान शिव जिस उस भगवान की पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, इस संसार के सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा, विरंचि का अर्थ है ब्रह्मा, जिसकी भक्ति करते हैं उस भगवान का भजन करना चाहिए। वृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्दी गौतम, क्यों उस भगवान का भजन करना चाहिए? क्योंकि भगवान प्रणत, भगवान प्रणत पाल है। वृत आरती हन, वे अपने भक्तों के दुख को हरने वाले हैं। वृत्यार्थी हम प्रणत पाल, और जो लोग उनकी शरण में जाते हैं उनका भगवान पालन करते हैं। भवाब्दी गौतम, और ऐसे भगवान के चरणों में, ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तो भक्तों, भागवत का यह प्रसिद्ध श्लोक है और यह तीनों श्लोक भागवत में चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है उसका प्रमाण स्थापित करता है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, अन्य अन्य शास्त्रों में बहुत प्रमाण है, मैंने पिछले रविवार को दिए थे, परंतु भागवत तो सभी शास्त्रों का सार है, फल है। तो इस भागवत में इस प्रकार गर्भाजन ऋषि निमि महाराज को चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं, कलयुग का युग धर्म के बारे में कह रहे हैं। और यह बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, ऐसा श्लोक शायद देखने मिलता है जिस श्लोक में तीनों भगवान की लीला सन्निहित हो। इसलिए हम सब गौड़ीय भक्तों को, वैष्णव को यह तीनों श्लोक कंठस्थ करना चाहिए। अगले रविवार को मैं सबको पूछूंगा, सब लोग याद करके लाइए, बहुत सुंदर श्लोक है, इसका आस्वादन करना चाहिए। यद्यपि समय बहुत कम होने के कारण मैंने इस पर व्याख्या नहीं की है, केवल श्लोक के शब्द के अर्थ बताए हैं। इस पर बहुत चिंतन, बहुत मनन किया जा सकता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने इसके ऊपर बहुत टीका लिखी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हुई है। तो समय मिलने पर आगे चलकर हम सब यह सब बातों का आस्वादन करेंगे, परंतु सबको यह श्लोक याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का, उनके भक्तों का जो तात्पर्य है इसके ऊपर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छा, पहला प्रश्न है कि हम कष्ट क्यों उठा रहे हैं? हम कष्ट क्यों उठा रहे हैं ये तो हमें ही पता होगा। कौन व्यक्ति क्यों कष्ट उठा रहा है तो वो स्वयं जानते हैं, परंतु शास्त्र में कहा गया है कि हम कष्ट इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए लोग कष्ट उठाते हैं। यदि सुखी नहीं होना है तो घर पर बैठकर सोए रहेंगे, कष्ट क्यों करेंगे? आज राम सिंह प्रभु रोज सुबह जाकर दुकान खोलते हैं, क्यों? सुखी होना चाहते हैं, नहीं तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, प्रभु जी की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति कष्ट इसलिए उठाते हैं क्योंकि सुखी होना चाहते हैं। और यहाँ पर सुख, सुखी होने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, और यहाँ पर सुख तो है नहीं, केवल कष्ट बच जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, हम जीव आए कहाँ से हैं? तो ऐसा ही हुआ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कुएं में गिर गया और कुएं में गिरकर पूछता है, अरे कौन गिराया, कौन गिराया, कौन गिराया? प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले उस कुएं से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए, पहले यह प्लान लगाना चाहिए कि यहां से बाहर कैसे निकले। और जैसे बाहर निकल जाओगे तो तुरंत आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये किसने गिराया और कहां से गिराया। फिर भी हम आए कहां से हैं? हम आए तो ऊपर से ही हैं, हम आए ऊपर से हैं। और दूसरी बात यह है कि हम भगवान के धाम से नहीं आए हैं। तो यह समझ लीजिए, इस भौतिक जगत और भगवान के धाम के बीच में एक जगह है, वहां से हम आए हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, हम जीव मरने के बाद जाएंगे कहां? अब जो जो जैसा कर्म करता है वे वहां जाता है। जो व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराता है तो फिर वह एसी में बैठा बैठा जाएगा। यदि वे सेकंड क्लास में रिजर्वेशन कराता है तो सेकंड क्लास में जाएगा, और यदि वे थर्ड क्लास में जनरल डिब्बे में जाना चाहते तो वहां जाएगा। जो जैसा कर्म करता है वह वैसी गति को प्राप्त करता है। इसलिए ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में रहकर कार्य करते हैं वे ऊर्ध्वम गच्छति, वे ऊपर जाते हैं स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक में। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में रहकर कर्म करते हैं वे मध्य इस पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। और जगन्न गुण वृद्धिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो जघन्य पाप करते हैं वे अध लोक में अर्थात नरक में जाते हैं। अब हमें कहाँ जाना है, हमारे हाथ में है किस जगह पर। यदि हम ऊपर जाना चाहते हैं तो सत्वगुण में रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यहीं पर रहना चाहता है तो रजोगुण में रहना चाहिए, और नरक में जाना है तो पाप कीजिए। तो इस प्रकार से जीव की। धन्यवाद। रामपाल यादव प्रभु के द्वारा यह प्रश्न था। राधा रानी हलादिनी शक्ति है, परंतु भगवान की लीला में यह हलादिनी शक्ति योग माया से आवृत रहती है। योग माया से आवृत रहते, भगवान भी योग माया से आवृत रहते हैं, राधा रानी भी योग माया से आवृत रहती हैं, सभी परिकर योग माया से आवृत रहते हैं। क्योंकि यदि योग माया से आवृत न रहते तो सब लोग सोचते कि अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम तो सब साथ के ही आए हैं ड्रामा करने के लिए। परंतु योग माया जो है ये भगवान को भी भुला देती है कि मैं भगवान हूं, योग माया। और राधा रानी भी योग माया को से आवृत रहती है, तभी तो विप्रलम रस का आस्वादन हो पाएगा, छुप छुप के मिलना। नहीं तो पता ही होता कि हम तो ऊपर से आए हैं तो वह विप्रलम रस का आस्वादन नहीं होता। तो राधा रानी योग माया से आवृत है, तो योग माया से आवृत राधा रानी के पीछे भागे, इसलिए ये शक्ति हलादिनी शक्ति है योग माया से आवृत। योग माया समावृतम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अपने लिए और साथ साथ में अपने परिकरों के लिए भी यही चीज, सब लोग योग माया में। बहुत सुंदर प्रश्न है। माया मेरी शक्ति है और मैं माया से आवृत नहीं होता हूं तो वो कौन सी माया से। मैं महामाया से आवृत नहीं होता हूं तो उसी गीता में भगवान कहते हैं योग माया समावृतम। हाँ मैं आवृत होता हूं महामाया से नहीं, योग माया से। गीता में कथन है योग माया सम आवृतम, तो माया से मैं आवृत नहीं होता हूं परंतु योग माया से तो आवृत होता हूं। क्योंकि जब तक योग माया कृष्ण को आवृत न करे तब तक कृष्ण भी आनंद नहीं ले सकते, तब तक कृष्ण भी विप्रलम रस का आनंद नहीं। तो कृष्ण क्यों रोते द्वारका में दिन भर, पता ही होता कि ये सब साथ के ही है, क्यों रोते। योग माया के कारण कृष्ण को भुला देते हैं, योग माया भगवान को भी भुला देती है, अपने परिकरों को भी भुला देती है योग माया। तो भगवान महामाया से कभी आवृत नहीं होते हैं, योग माया से, और वो भी भगवान की इच्छा से होते हैं। भगवान की शक्ति भगवान को हेल्प करती है। तो कृष्णम का नाम लेना कर्म अच्छा है या बुरा है, तो अच्छा कर्म किया। हाँ भगवान का नाम लेने वाला नरक में जाने से बच जाता है, ये सत्य है, परंतु यही सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। नरक में जाने से बचना यही सर्वोच्च। अब फॉर एग्जाम्पल आप जेल में जाने से बच गए तो क्या सब कुछ छोड़ देंगे। हम पुलिस वालों ने हमें जेल में नहीं डाला, दो चार लोगों को जेल में डाल दिया और हमें जेल में नहीं डाला तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे। फिर भी हम पैसे कमाने के लिए कुछ करते हैं। तो यद्यपि हम जेल से बच गए हैं परंतु फिर भी उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं। वैसे हम नरक में जाने से बच गए तो नरक में जाने से बचकर यहां पर कहानी समाप्त नहीं होती है। हमें दूसरा चीज प्राप्त करना है, वो है भगवान का धाम, भगवान की लीला में प्रविष्ट होना है। क्यों? क्योंकि जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक यह फजीहत से यह दुखों से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए नरक में जाने से बचना यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह हमारा लक्ष्य है ही नहीं। ये तो नए नए लोगों को बताया जाता है, हमारा लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति करना, कृष्ण के धाम की प्राप्ति करना। तो कृष्ण की धाम की प्राप्ति करने के लिए बारंबार भगवान का नाम रटा जाता है। बाकी यह सत्य है, एक बार कितना भी बड़ा पापी है, एक बार भगवान का नाम ले लिया तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु एक शर्त है कि वह भगवान का नाम अपराध रहित होना चाहिए, ये बीच में एक शर्त है। तो ये है, तो हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं भगवान का नाम ले लिए नरक में जाने से बच गए, तो बच गए तो दूसरी बार मनुष्य जीवन मिलेगा और तब पाप कर दिए तो नरक में जाओगे। लक्ष्य ऊंचा, टारगेट ऊंचा होना चाहिए। नहीं, जाना है तो भगवान के धाम में, और उसके लिए यह सब कथा कीर्तन बार 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 किया जाता है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो धैर्य से कथा सुने, और एक घंटा प्रवचन लेट होने के बाद भी कोई सोए नहीं। हरे कृष्ण।